एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सब तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमें तेरा पवित्र आत्मा से चला, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरा वचन को समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर, उन्हें तेरे नज़दीक आने के लिए मदद कर पिता परमेश्वर। और मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा अच्छी तरह से बतला सकूं और समझा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है जंगल में विजय। हम पढ़ते हैं लूका 19:10 में, जहाँ यीशु मसीह कहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और हम उत्पत्ति 3:15 में पढ़ते हैं, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जब शैतान ने सुना कि उसके औस्त्री के बीच और उसके वंश के बीच शत्रुता होनी चाहिए, तो वह जानता था कि मानव स्वभाव को भ्रष्ट करने का उसका काम बाधित होगा। फिर भी जब उधार की योजना पूरी तरह से सामने आई, तो शैतान अपने स्वर्गदूतों के साथ खुश हुआ कि मनुष्य के पतन का कारण बनने के बाद वह परमेश्वर के पुत्र को उसके उच्च पद से नीचे ला सकता है। उसने घोषणा की कि उसकी योजनाएं अब तक पृथ्वी पर सफल रही हैं, और जब मसीह को मानव स्वभाव को अपने ऊपर लेना चाहिए तो वह भी पराजित हो सकता है, और इस प्रकार पति जाति का उद्धार रोका जा सकता है। आज जब हम जंगल में प्रलोभनों को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं, जैसा कि बाइबल में पहले कभी नहीं देखा गया, मसीह और शैतान के बीच महान विवाद, जैसा कि उनके बीच खुलेआम लड़ा गया था। शैतान ने दुनिया पर अपना दावा किया था और मसीह इसे वापस जीतने के लिए आया था, और इसे वापस जीतने के लिए उधार की योजना केंद्रित थी। यीशु के जन्म के बाद उसे मारने में विफल होने के बाद शैतान ने जाति के उद्धार को बाधित करने के लिए एक और तरीका आजमाया। यह हम जंगल के प्रलोभनों में देखते हैं। मत्ती 1:20-23 में यदि हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि यीशु को दिए गए नाम इमानुएल एक है, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। प्यारो, क्या आप जानते हैं कि यीशु इस पृथ्वी पर हमारे साथ रहने के लिए क्यों आए? सबसे पहले वह उस प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करने आया जिसे आदम ने खो दिया था। हम पढ़ते हैं रोमियो 5:12-15 में, हम यीशु के शाही पहलू प्रभुत्व रखने की एक झलक तब देखते हैं जब उसने भीड़ को प्रेरित किया। 5,000 लोग उसे राजा बनाना चाहते थे, और जब बच्चों ने होशाना, एक प्रकार की प्रशंसा जो उस व्यक्ति के लिए निर्देशित होती है जो लोगों को उनके दुश्मनों से बचाएगा, गाया गया, हम सृष्टि पर उसकी शक्तियों को भी देखते हैं, जैसे कि टूटे हुए मनुष्यों को फिर से संपूर्ण प्राणी बनाने की उसकी क्षमता। उदाहरण के लिए, जन्म से अंधा आदमी और 12 साल तक खून से बहने वाली महिला को उन्होंने चंगा किया, उस रोग से उसे चंगा किया। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रकृति पर भी प्रभुता पाते हैं, प्रकृति पर उसकी शक्ति, जैसे कि जब उसने तूफान को शांत किया और हवा और लहरों को शांत रहने के लिए कहा, उसके शब्द सुनकर तूफान शांत हो गए। दूसरा, वह न्याय करने और शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया था। यह हम पाते हैं यूहन्ना 9:39 में और 1 यूहन्ना 3:8 में। तीसरा, यीशु खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए संसार में आया। लूका 19:10 में हम पाते हैं, और उनके पापों को दूर करने के लिए यूहन्ना 1:29। उसे हमारे जैसा बनाया गया ताकि वह एक वफादार महायाजक बन सके और इस तरह हमें परमेश्वर के पास वापस ला सके, जैसा हम पाते हैं इब्रानियों 2:17 में। अंततः यीशु हमें यह दिखाने के लिए आए कि परमेश्वर कैसा है, तथा हमें और इस ब्राह्मण को यह बताने के लिए आए कि उनका वास्तविक चरित्र क्या है। देखिए यूहन्ना 14:9 में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रकट होने से पूरे क्षेत्र में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था जो भविष्यवक्ता एलिया जैसा दिखता था। यह बात हम पाते हैं मत्ती 3:4 में, और इसे हम दूसरा राजा 1:8 से मिला सकते हैं। मत्ती 3:7-12 में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने मसीहा के परिचय में न्याय के विषयों को जोड़ा। यूहन्ना जो कर रहा था उसके बारे में लूका द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यशायाह से एक उदाहरण है, जिसमें बताया गया है कि कैसे परमेश्वर निर्वासितों के लिए वादा किए गए देश में लौटाने के लिए एक मार्ग तैयार करेगा। पढ़िए लूका 3:3-6 में यिर्मयाह उस विशेष मार्ग को बनाने का कारण बताता है। समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए इसे सुगम बनाना, अंधे, लंगड़े, गर्भवती, छोटे बच्चे वाली माताएं और उन सभी लोगों के लिए जो वादा किए गए देश में लौटाने की इच्छा रखते हैं, हम पाते हैं यिर्मयाह 31:7-9 में। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग यहूना के पास उमड़ पड़े, उनकी आशा जगी कि वे भी परमेश्वर के उस महान दिन के लिए तैयार हो सकते हैं जो जल्दी उन पर आने वाला था। बपतिस्मा देने हारा परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था मरुभूमि में प्रचार करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, लोगों को वे ताकि वे मन फिराए और आने वाला उद्धारकर्ता को वे लोग पहचाने और उसे ग्रहण करें। आने वाला उद्धारकर्ता यीशु मसीह था। मत्ती 4:1-3 में हम रेगिस्तान में यीशु मसीह के शैतान द्वारा पहले परीक्षा को पाते हैं। बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह मरुभूमि में गया कि वहां अकेले में परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सके, प्रार्थना में उससे बातचीत कर सके और अपना समय परमेश्वर के साथ बिताने के द्वारा उसे नजदीकी संपर्क में आकर के आत्मिक शक्ति प्राप्त कर सके, ताकि उसे आने वाले समय में उसके कार्य में, उसके मिशन में उसका मदद हो। इसी कारण यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद पहाड़ में, जंगल में चले गए कि वह परमेश्वर से विनती में समय बिताएं। हम पाते हैं मत्ती 4:1-3 में उसका पहली परीक्षा। जब यीशु को परीक्षा के लिए जंगल में ले जाया गया तो वह परमेश्वर की आत्मा द्वारा नेतृत्व किया गया था। उसने परीक्षा को आमंत्रित नहीं किया, वह जंगल में अकेले रहने, अपने मिशन और कार्य पर विचार करने के लिए गया था। उपवास और प्रार्थना के द्वारा उसे उस रक्त रंजित मार्ग के लिए खुद को तैयार करना था जिस पर उसे यात्रा करनी थी। लेकिन शैतान जानता था कि उद्धारकर्ता जंगल में चला गया है और उसने सोचा कि यह उसके पास जाने का सबसे अच्छा समय है। एलन जी वाइट कहती है द डिजायर ऑफ एजेस पृष्ठ 114 में, यीशु के प्रलोभनों के विवरण और इसराइलियों के पलायन के दौरान उनके अनुभव के बीच नाटकीय समानताएं हैं। पानी से होकर आने के बाद यीशु रेगिस्तान में चले गए जहां उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और 40 दिनों तक उनकी परीक्षा ली गई। इसी तरह इसराइली पानी लाल सागर से होकर गुजरे, रेगिस्तान में प्रवेश किया जहां उनके पास रोटी नहीं थी और वे वहां 40 साल तक रहे। सुसमाचार का विवरण कहता है कि 40 दिनों के बाद यीशु को भूख लगी। मत्ती 4:2 में हम यह पाते हैं। फिर शैतान एक स्वर्गदूत के रूप में उसे मदद करने के तौर में यीशु के पास आया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। मत्ती 4:3 में पाते हैं परमेश्वर के किसी स्वर्गदूत को यीशु के दिव्यता के बारे में कोई संदेह नहीं है। प्यारों, फिर से ध्यान दे कि कैसे यीशु का उत्तर मत्ती 4:4 में निर्गमन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण है। परमेश्वर ने तुम्हें मना खिलाया जिसे ना तो तुम जानते थे और ना ही तुम्हारे पूर्वज जानते थे, ताकि वह तुम्हें बताए कि मनुष्य रोटी से केवल नहीं जी सकता है, बल्कि मनुष्य हर उस वचन से जीता है जो यहोवा के मुख से निकलता है। यह हम पाते हैं व्यवस्था विवरण 8:3 में। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को जानता था और इस वचन को ख्याल करके वह शैतान को जवाब देता है। प्रलोभन को समझना और उसका शिकार ना बनना महत्वपूर्ण है। बाइबल का वचन का अध्ययन उसे जानने और समझने में हमारी मदद करती है। एक और प्रलोभन यीशु के पास आता है। पहला प्रलोभन निर्गमन के समान है, लेकिन इसकी जड़ें पतन में थी। भूख के आगे झुकने के बजाय परमेश्वर के प्रति वफादारी को प्राथमिकता देकर यीशु ने ज्ञान के वृक्ष पर आदम द्वारा खोई गई जमीन को पुनः प्राप्त किया। हालांकि आदम के समय से मानव जाति जिस खाई में उतरी थी उसे पूरी तरह से पाटने के लिए यीशु को दो और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। मती के अनुसार दूसरे प्रलोभन में शैतान यीशु को मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से में ले गया, संभवतः दक्षिण पूर्व कोने में, जहां से एक खड़ी खाई दिखाई देती थी। फिर से ताना मारने वाला कथन आया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, जिससे पता चला कि प्रलोभन देने वाला यीशु का कोई मित्र नहीं था। यीशु को सस्ते नाटकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। परमेश्वर पर उसका भरोसा सच्चा था। दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, शैतान ने उसे यह प्रलोभन दिया था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस ऊंचे स्थान से, मंदिर के ऊंचे चोटी से तू कूद और तुझे परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजेंगे और वे तुझे उठा लेंगे, तुझे चोट नहीं लगने देंगे, क्योंकि ऐसा लिखा है परमेश्वर का वचन में। शैतान परमेश्वर का वचन को याद दिलाते हुए यह कह रहा था, लेकिन यीशु मसीह समझ गया कि यह परीक्षा है, यह प्रलोभन है। यीशु का अपने पिता पर पूरा भरोसा था। जब वह स्वर्ग छोड़ा और मनुष्य बनने के लिए आया, तब से परमेश्वर पर यीशु का पूरा भरोसा था। उसके बाद क्रोध, गलत प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक अपमान और अपनी मृत्यु के अन्याय को सहने में प्रभु यीशु मसीह का हम पाते हैं उसके परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना। इसे हम देख सकते हैं फिलिपी 2:5-8 में। प्रभु यीशु मसीह इन सब संकट और सताहट को सहते हुए वह परमेश्वर पर भरोसा किया। परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वह अपने जीवन में हर तकलीफ उठाया और हमारे पाप को उठाया, क्योंकि वह जानता था कि यही एक उपाय है जिससे हम मनुष्य जाति को, हम पापी लोगों को बचा सकता है। उसका मिशन उस दुनिया को पुनः प्राप्त करना था जिसे आदम और उसके वंशजों ने खो दिया था। यीशु में वाचा के सभी वादे पूरे होने थे और दुनिया को उद्धार का अवसर मिलने वाला था। फिर से यीशु ने जवाब दिया, यह लिखा है, फिर से व्यवस्था विवरण का हवाला देते हुए और फिर से अपने अनुभव को निर्गमन से जोड़ते हुए, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना लेना जैसे तुमने मसा में उसकी परीक्षा की थी। मसा एक जगह था जहां पर इसराइली लोग परमेश्वर का परीक्षा कर रहे थे। व्यवस्था विवरण 6:16 से यह लिया गया है। मसा वह स्थान था जहां इसराइलियों ने पानी की कमी के बारे में कड़वी शिकायत की थी और मूसा ने इसे उपलब्ध कराने के लिए चट्टान पर प्रहार किया था। वे लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि इस मरुभूमि में क्या परमेश्वर हमें पानी दे सकता है। इस तरह का उनका सवाल था, उनका सोच था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और उन्हें चट्टान से पानी दिया। इस अनुभव का मूल्यांकन करते हुए मूसा ने कहा कि लोगों ने यहोवा की परीक्षा यह कहकर की थी, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं, निर्गमन 17:7। बेशक यीशु बेहतर जानते थे और चाल में नहीं फंसे, भले ही इस बार शैतान ने यह लिखा है। मती 4:4-6 में यह वाक्यांश पाते हैं। शैतान भी बाइबल के पदों को ले रहा था, उसको जिक्र कर रहा था और यीशु मसीह को फंसाना की कोशिश कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह समझ गए वह पाप में नहीं गिरे। आगे हम पाते हैं तीसरा परीक्षा। मती के संस्करण में पहला प्रलोभन भूख पर केंद्रित था और दूसरा परमेश्वर को अपने वश में करने का, जबकि तीसरा प्रलोभन स्वयं मसीह उसके राजत्व और पृथ्वी पर उसके अंतिम मिशन के लिए एक सीधी चुनौती थी। मती 4:8-10 में हम यह पाते हैं, शैतान द्वारा यीशु को जिस अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले जाया गया उसका क्या मतलब था, उसका क्या महत्व हो सकता है। इसको हम मिला सकते हैं व्यवस्था विवरण 34:1-4 और प्रकाशित वाक्य 21:10। बाइबल में जिस तरह से राष्ट्रों को देखने के लिए बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाने की यह विषय का इस्तेमाल किया गया है, उससे हम देख सकते हैं कि यीशु की यात्रा कोई दर्शनीय स्थल की यात्रा नहीं थी। इस परिदृश्य से भविष्य सूचक दर्शन जुड़ा हुआ है। पहाड़ की चोटी से मूसा ने वादा किए देश को वैसा ही देखा जैसा कि बाद में होगा, और यहूना ने बाद में भविष्य के नए यरूशलेम को देखा। शैतान फिर कहता है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मती 4:9 में यह पढ़ते हैं। जिस तरह शैतान ने आदम और हवा को मूर्ख बनाया कि वे परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं, जबकि वे पहले से ही उसकी छवि में थे, उसी तरह शैतान ने दिखावा किया कि वह परमेश्वर है और दुनिया के देशों का स्वामित्व केवल उसका है, और थोड़ी सी श्रद्धांजलि के लिए वह आसानी से यह सब यीशु को दे सकता है। लेकिन क्या यह वह ऐसा होता? शैतान उसे ठग रहा था, शैतान उसे परीक्षा में डाल रहा था। प्यारो, शैतान यीशु मसीह से जो हमारा उद्धार करता है उसे उस मरुभूमि में कहा कि यदि तू मुझे एक बार प्रणाम करोगे तो दुनिया के सब चीज, उसके दुनिया के सब महिमा तुझे दे दूंगा। शैतान वहां पर दर्शा रहा था कि इस दुनिया का प्रभुत्व उसके पास है। जब उसने आदम और हवा को पाप में गिराया, उन्हें ठगा, तो वह समझता है कि इस पृथ्वी का प्रभुत्व उसके पास आ गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान के फुसलाहट को, उसके परीक्षा को जान गया, और यीशु मसीह जानता था कि वह परमेश्वर की ओर से आया है और उसे एक खास मिशन में जाना है। वह शैतान के चंगुल में आसान से नहीं फंसने वाला था। वह साफ साफ शैतान से कहता है, परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करके, हमेशा यीशु मसीह परमेश्वर का वचन का सहारा लिया, परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह से जानता था, और शैतान को घुड़क के कहता है, तू पीछे हट जा शैतान, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा ही का उपासना करना, उसकी सेवा करना, उसे छोड़कर तू किसी और का उपासना ना करना। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति सच्चा वफादार था। शैतान हार गया। यह परीक्षा वफादारी पर केंद्रित थी। मानव जाति को किसको अंतिम वफादारी देनी चाहिए? अदन में जब आदम और हवा ने सांप के आगे घुटने टेक दिए तो वे वास्तव में शैतान को अपनी पहली वफादारी दे रहे थे, और यह संक्रमण प्रत्येक पीढ़ी में तेजी से फैल गया। प्रत्यक्ष ईश्वरीय हस्तक्षेप के बिना महान विवाद का फैसला शैतान के पक्ष में होता। मानव जाति और शायद पृथ्वी पर जीवन भी जारी नहीं रह सकता था, दांव इतने ऊंचे थे। पर हम ध्यान दें कि यीशु ने, जैसे कि पोतीफर की पत्नी के साथ यूसुफ की तरह, बुराई को अपने पास नहीं रहने दिया। यीशु ने शैतान को दूर जाने का आदेश दिया, उसको हट जाने के लिए कहा, उसे पीछे हो जाने के लिए कहा। यूसुफ ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसने खुद को संभावित बुराई के दृश्य से दूर कर लिया, लेकिन यीशु मसीह खुद शैतान को उस जगह से हट जाने के लिए कहा। हम इसी तरह यूसुफ के बारे में पाते हैं उत्पत्ति 29 का 11 से 12 में कि वह जब परीक्षा आया, परीक्षा से बचने के लिए वह परीक्षा से दूर चला गया। हमारे लिए भी यह कितना सरल सबक है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, उसके वचनों पर भरोसा करें और परीक्षा से हम दूर हटे, और नहीं तो परीक्षा को दूर करें। इसके लिए हम परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। इन तीनों ही प्रलोभनों में यीशु ने अपने बचाव के लिए पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल किया। व्यवहारिक रूप से जब हम प्रलोभन का सामना करते हैं तो उसी तरह की जीत पाने के लिए हम पवित्र शास्त्र का, जो कि परमेश्वर का वचन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम उसे पढ़ते हैं और उसका ज्ञान रखते हैं, हम मजबूत होंगे, आत्मिक रूप से हम ताकतवर होंगे, शक्तिशाली होंगे और हम शैतान का सामना कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा और हमें अपने आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से हमें विजय दिलाएगा। प्यारो, क्या आप इसमें हम भरोसा करते हैं? आइए हम उसे जुड़े और उसमें भरोसा करके इन सब परीक्षाओं में विजयी हो। परमेश्वर की यह इच्छा है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास फिर से आते हैं। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे साथ होने के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। पिता, तू हमें बचाने के लिए आया है, प्रभु यीशु मसीह को दिया कि वह हमें इस संसार में शैतान से और पापों से विजय दे सकता है। हम उस पर भरोसा करें। पिता, हमें तेरा पवित्र आत्मा दे कि हम तेरे वचनों को सुने, उसका अध्ययन करें और तेरे पीछे चले। हम सबों को तेरे बहुतायत से आशीष दे पिता, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुना ग्रहण करें। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।